दिन भर तारीख 8 दिसंबर दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड मामले में 19 दिसंबर को अदालत में पेश होंगे सोनिया और राहुल। राहुल ने कहा कि ये मामला बदले की कार्रवाई है।
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को कभी भी नहीं सह पाएंगे कि राजनीतिक द्वेष की भावना से हमारे नेताओं को तंग किया जाए, हमारे नेताओं को परेशान किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क के ऊपर उतर करके इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं।
पाकिस्तान पहुंची भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कल चलेगा मुलाकातों का दौर। चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद पहली बार जारी हुआ रेड अलर्ट।
You can't see the tops of the skyscrapers, so yeah, if you're on the street, a lot of the tall buildings in Beijing.
IPL में शामिल हुई पुणे और राजकोट की दो नई टीमें, खबरें और भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है। समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड से जुड़ी वित्तीय मदद के बारे में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2012 में एक याचिका दायर की थी और कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे। अब मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। इस दिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अदालत में पेश रहने के आदेश दिए गए हैं। सोनिया गांधी ने कहा है कि वह इंदिरा गांधी की बहू हैं और डरने वाली नहीं हैं। पाकिस्तान पहुंची भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि वह दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर करने और आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान आई हैं। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैंकॉक में वार्ता हो चुकी है। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था UNHCR ने चेतावनी दी है कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान में दिए जा रहे भाषणों से अमरीका में सीरियाई शरणार्थियों को बसाने के कार्यक्रम को नुकसान हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए UNHCR की प्रवक्ता ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान और कई प्रांतों के गवर्नरों की टिप्पणियां एक बेहद महत्वपूर्ण पुनर्वास कार्यक्रम को खतरा पहुंचा रही हैं। ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए लॉस एंजलिस में एक व्यक्ति ने कहा,
I think it's crazy. It goes against everything that America stands for.
मुझे लगता है कि ये पागलपन है, ये अमेरिका के मूल्यों के खिलाफ है। हम प्रवासियों का देश हैं और यहाँ धर्म नस्ल से फर्क नहीं पड़ता, ये बेवकूफ़ी है। अगर आप दूसरे विश्व युद्ध के दौरान के जर्मनी को देखें तो पाएंगे कि यहूदियों के साथ क्या हुआ और उनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। इस देश में मुसलमानों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया जा रहा है। ये थे लॉस एंजलिस के एक व्यक्ति के शब्द। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुट भविष्य में संभावित शांति वार्ता के लिए संयुक्त मोर्चा गठित करने के उद्देश्य से सऊदी अरब में वार्ता कर रहे हैं। अभी वो प्रारंभिक वार्ता कर रहे हैं, वास्तविक वार्ता बुधवार को होगी। 4.5 साल पहले शुरू हुए सीरियाई संघर्ष के दौरान ये अपनी तरह की पहली वार्ता है। वार्ता में आमंत्रित गुटों में अमरीका समर्थित फ्री सीरियन आर्मी भी शामिल है। सऊदी अरब समर्थित शक्तिशाली इस्लामी गुट भी वार्ता में हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामिक स्टेट और अलकायदा से जुड़े अन्य समूहों को वार्ता से बाहर रखा गया है। दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनियों में से एक एंग्लो अमेरिकन ने कीमतों में गिरावट से निपटने के लिए एक बड़ा पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। हीरे, प्लैटिनम तथा तांबे जैसी धातुओं का खनन करने वाली एंग्लो अमेरिकन अपने कर्मचारियों की संख्या में 85,000 तक की कटौती करेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। किसी जमाने में एक अखबार घर के दरवाजे पर दस्तक देता था और उसका नाम हुआ करता था नेशनल हेराल्ड। इसी नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष उनके बेटे राहुल गांधी को 19 दिसंबर को दिल्ली की एक अदालत में पेश होना होगा। इन पर अभियोग है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से नेशनल हेराल्ड अखबार की हजारों करोड़ों की जायदाद को हासिल किया। आपको बता दें कि मामले में निचली अदालत की ओर से सोनिया और राहुल गांधी की ओर से अदालत में पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया था, जिसके विरोध में दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन याचिका खारिज थी। इसके बाद कांग्रेस के दोनों नेताओं को आज पटियाला हाउस अदालत में पेश होना था। अदालत ने उन्हें पेशी से राहत दी और 19 तारीख को पेश होने के कहा। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया, जबकि सरकार का कहना है कि ये तो अदालत का मामला है और इस मामले में सरकार को क्यों घसीटा जा रहा है। संसद में भी नेशनल हेराल्ड मामले की गूंज सुनाई दी, जमकर हंगामा हुआ। विनीत खरे की रिपोर्ट।
अदालत के आदेश के खिलाफ आज हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और वो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। साथ में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा,
कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस बात को कभी भी नहीं सह पाएंगे कि राजनीतिक द्वेष की भावना से हमारे नेताओं को तंग किया जाए, हमारे नेताओं को परेशान किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़क के ऊपर उतर करके इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट के अलावा बाकी जो सारी चीजें हो रही हैं, सुब्रमण्यम स्वामी कैसे, वो कौन है सुब्रमण्यम स्वामी, चिदम्बरम को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है ऐसे समय के ऊपर, वीरभद्र सिंह को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है ऐसे समय के ऊपर, सिर्फ कोर्ट की तरफ से नहीं हो रहा है, सरकार की एजेंसीज इसमें साथ में काम कर रही हैं।
कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने समाचार चैनल एनडीटीवी से कहा कि वो इंदिरा गांधी की बहू हैं और वो किसी से नहीं डरती। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे राहुल गांधी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया।
I absolutely see a political vendetta. This is the way the central government functions. This is the way.
राहुल गांधी कह रहे थे कि मैं इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तौर पर देखता हूं। केंद्र सरकार इसी तरह काम करती है, वो इसी तरह सोचते हैं, उन्हें लगता है कि वो इस तरह मुझे सवाल पूछने से रोक सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, मैं उनसे लगातार सवाल पूछता रहूंगा। सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने संसद की कार्रवाई भी नहीं चलने दी। उधर सरकार का बचाव करते हुए शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा,
न्यायपालिका इस देश में स्वतंत्र है, किसको नोटिस जारी करना नहीं जारी करना, किसको समन करना नहीं करना, किसके संदर्भ में केस लेना नहीं लेना, ये सब न्यायपालिका विचाराधीन है, इसमें सरकार है ही नहीं।
उधर कांग्रेस का पक्ष रखते हुए पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि किसी को उधार देने में आखिर किस तरह का अपराध।
आई डोंट सी हाउ द ग्रांट ऑफ अ लोन
कपिल सिब्बल कह रहे थे, मुझे नहीं दिखता कि किसी को उधार देने में कोई अपराध है। अगर पार्टी किसी को उधार देती है तो क्या वो अपराध है? उन्होंने कहा कि भाजपा ने एक कंपनी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और मिले डिविडेंड को बिजनेस खर्चे के तौर पर दिखाया, क्या इस पर सवाल उठाया जा सकता है? कपिल सिब्बल,
नॉर्मल कमर्शियल ट्रांजैक्शन में लोन असाइन होते हैं, हजारों लोन असाइन होते हैं, तो दूसरी बात यह है कि आपको लोन असाइन नहीं करना चाहिए था, आप राइट ऑफ भी नहीं कर सकते लोन, ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जैसा आप कहते हैं कि देखिए यंग इंडियन कंपनी जो बनाई गई जिसको लोन असाइन किया गया, उसने AGL में 99% शेयर ले लिए, उसके लिए एक प्रोसीजर है, कंपनीज एक्ट का प्रोसीजर है, उसमें एक ऐसे कोई ट्रांजैक्शन में EGM नोटिस, EGM बुलाई जाती है, उसमें नोटिस दिया जाता है, वो नोटिस दिया गया 2/3 मेजोरिटी की से पास होता है, 2/3 मेजोरिटी अप्रूव्ड दैट रेजोल्यूशन एंड देन द शेयर्स वर गिवन, नो शेयर होल्डर ऑफ AGL हैज ऑब्जेक्टेड।
जहां कुछ समय पहले लग रहा था कि केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं और GST बिल का भविष्य थोड़ा उज्ज्वल होता दिख रहा था, इस ताजा मामले ने माहौल फिर खराब कर दिया है। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
तो मामला एक बार फिर से गर्म है और इस बार केंद्र में है नेशनल हेराल्ड का मामला। दरअसल ये जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, ये है क्या और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी का क्या लेना देना है? आइए ये सारा जो पूरा मामला है सलमान रावी से समझते हैं।
देखिए ये मामला तो आपको पता ही है कि नेशनल हेराल्ड अखबार, इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी और उस समय ये अखबार अब कांग्रेस का मुखपत्र हुआ करता था और आज़ादी की लड़ाई में इसका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन अखबार का जो मालिकाना है वो एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी AJL के पास था, जो दो अखबार और छपते थे वहाँ से। आज़ादी के बाद 1956 में इसे गैर मुनाफे की कंपनी यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत इसे कर मुक्त भी कर दिया गया, जैसा होता है
टैक्स फ्री।
2008 में AGL के सभी प्रकाशनों को निलंबित कर दिया गया और कंपनी पर 90 करोड़ रुपए का कर्ज भी चढ़ गया। बुरे हालत में आ गया नेशनल हेराल्ड उस जमाने में।
और यहाँ पर मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी अखबार था और हिंदी अखबार जो था वो नवजीवन था
और उर्दू था कौमी आवाज। वर्ष 2008 में जब कर्ज चढ़ गया तो उसके बाद कांग्रेस के आला कमान ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक नई गैर मुनाफे की कंपनी बनाई जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी तो थे ही, साथ में मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे, ऑस्कर फर्नांडिस और सैम पित्रोदा को भी निदेशक बनाया गया इस कंपनी का। इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 76% शेयर थे जबकि बाकी के जो लोग थे इस मंडल में उनके पास 24% शेयर थे और कांग्रेस पार्टी ने इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए बतौर ऋण भी दिए थे। यहीं पर जो पेच है यहां से शुरू होता है।
अच्छा सलमान, ये अदालत में ये मामला कैसे पहुंचा और सुब्रमण्यम स्वामी की क्या भूमिका है इसमें?
देखिए 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका दायर की निचली अदालत में और कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। तो उन्होंने जो है अपनी याचिका में ये कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने सिर्फ 50 लाख रुपए में 90 करोड़ से ज़्यादा रुपए वसूलने का उपाय निकाल लिया जो कि नियमों के खिलाफ है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महज 50 लाख रुपए में AGL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को अपना बनाने की चाल चली कांग्रेस के नेताओं ने। ये उनका आरोप है जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया उन्होंने।
अब ये इसके बाद ये मामला जो है अदालत में पहुंच गया, अदालत में इसका स्टेटस क्या है?
देखिए, इसमें गवाहों के बयान दर्ज किए गए जो सुब्रमण्यम स्वामी ने जो गवाह बनाए थे इस मामले में, और 26 जून 2014 को अदालत ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित जो है कंपनी के जितने भी निदेशक बनाए गए थे उनको समन जारी किया हाजिर होने का। और अदालत ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के सभी जो निदेशक हैं उन लोगों को कहा कि भाई 7 अगस्त 2014 को वो अदालत के सामने हाजिर हों। मगर कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और निचली अदालत द्वारा जारी समन को स्टे करवा लिया।
कांग्रेस के नेताओं की क्या दलील है?
देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी के जो आरोप थे याचिका में उसके खिलाफ में जो कांग्रेस ने अपना प्रतिवेदन दिया उसमें उन्होंने यही कहा है कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की संस्था वो सामाजिक संस्था है जो दान कर्म का काम करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये शेयर स्थानांतरित किए गए वो गैर कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये शेयर स्थानांतरित करने का सिर्फ एक जो है ये वित्तीय प्रक्रिया थी जिसके तहत शेयर ट्रांसफर किए गए जो पहले की कंपनी थी और जो नई कंपनी बनाई गई उसमें।
तो नेशनल हेराल्ड मामला क्या है और 19 दिसंबर को अदालत में इसी मामले में सोनिया और राहुल गांधी को पेश होना है, ये बता रहे थे हमारे सहयोगी सलमान रावी। रुख पाकिस्तान का करते हैं जहां भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पहुंच गई हैं। राजधानी इस्लामाबाद पहुंची सुषमा स्वराज ने अब से थोड़ी देर पहले कहा,
ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हो रही है इसलिए मेरे लिए लाजमी है और वाजिब भी कि मैं पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज साहब से मिलूं और अपने काउंटर पार्ट सरताज साहब से मिलूं। तो दोनों से मेरी मुलाकात होगी और दोनों मुल्कों के आपसे रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी करेंगे। मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़े, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा।
तो सुषमा स्वराज ये कह रही थी कि वो अच्छे सकारात्मक बातों को, दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते को सुधारने और आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। आगे क्या बात होगी ये बाद में पता चलेगी। सीधे चलते हैं बीबीसी उर्दू संवाददाता जहीरुद्दीन बाबर के पास जो कि इस समय कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं इस्लामाबाद से। जहीरुद्दीन साहब, ये बताइए कि इस मुलाकात को जो कि बहुत प्रतीक्षित मुलाकात है, भारत और पाकिस्तान के जब भी नेता मिलते हैं तो महकमे में बड़ा एनर्जी आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है, किस तरह से देखा जा रहा है इसे?
बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि बहुत ही अहम मुलाकात है। उफा में जो वजीर आजम है पाकिस्तान के मियां नवाज शरीफ और भारत के जो वजीर आजम है उन दोनों की मुलाकात के बाद कह लीजिए कि ये पहली मुलाकात है जिसमें इतनी बड़ी सतह के दोनों मुल्कों के वज़ीर खारजा आपस में मुलाकात कर रहे हैं, तो यकीनन चर्चा इसी की है। हालांकि यहाँ इस्लामाबाद में जो मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जमा हुए हैं उसमें मुद्दा तो अफगानिस्तान का है, लेकिन मीडिया देखें, अखबारात देखें, हर तरफ चर्चा भारतीय विदेश मंत्री की आमद का है। और अभी कुछ देर बाद तवक्को है कि वो पाकिस्तान के जो मुशीर हैं उमूर खारजा के सरताज अजीज, उनसे वो मुलाकात करेंगी और उस मुलाकात में खास तौर पे दोनों मुल्कों के जो आपस में ताल्लुकात हैं, जो मामलात हैं, उन पर बातचीत होने की तवक्को है। इसके अलावा क्रिकेट पर बातचीत होगी। तो आज रात तक या अभी तक तो यूं कह लीजिए कि अफगानिस्तान जो है वो पीछे है और आगे पाकिस्तान और भारत में आपस में क्या चल रहा है, किस चीज की तवक्को रखी जाए, क्या इम्कान है, सुषमा स्वराज यहाँ क्या कहेंगी, क्या वादे करके जाएंगी या पाकिस्तान उनके सामने क्या रखेगा, तो बस यही बात हो रही है।
जहीरुद्दीन बाबर साहब, अभी कुछ दिनों पहले दोनों देशों के जो NSA हैं उनकी मुलाकात हुई और इससे पहले नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी का भी आमना सामना हुआ था। जब भी ये मुलाकात होती है भारत पाकिस्तान की, कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ दिनों बाद क्या होता है कि भाई बैकफुट पर आ जाते हैं, आप फिर से तलवारें म्यान से निकल आती हैं। जी, किस तरह से आपने बताया कि काफ़ी लोग नज़र गड़ाए हुए हैं इस मुलाकात में।
जी बिल्कुल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं पाकिस्तान के जो बैंकॉक में मुलाकात करके आए भारतीय हमसद के साथ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर जंजुआ, उन्होंने आज सुबह यहाँ पर वजीर आजम को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और जो काबीना के अराकीन हैं, बड़ी हाई लेवल की यहाँ पर मीटिंग हुई। उन्होंने ब्रीफिंग दी कि भारत के साथ उनकी बैंकॉक में क्या बातचीत हुई, उसके बाद फिर यहाँ पर वजीर आजम हाउस में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल राहील शरीफ ने और वजीर आजम ने अलग मुलाकात की। तो यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान ने इस मुलाकात से पहले या भारतीय विदेश मंत्री की आमद से पहले भरपूर तैयारी की गई है। तो यकीनन उम्मीद नहीं रखी जा सकती, जैसा कि सुषमा स्वराज ने भी यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मुख्तसर सी जो बात की मीडिया से, तो उनके उसे यही लगा कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, कोई जो है लावा उबलेगा नहीं किसी भी तरह से। तो उम्मीद यही रखी जा रही है कि
बर्फ पिघलेगी,
मुस्बत सामने आ सकता है, बर्फ पिघलेगी। और कल जो पाकिस्तानी वज़ीरे जो पाकिस्तानी मुशीरे खारजा है, उन्होंने भी थोड़ा सा इंडिया दिया था कि बर्फ पिघलने की तरफ ये कदम है उनका यहाँ पर आ जाना ही। तो उसके अलावा जो अहम चीज है, क्रिकेट को खासतौर पे जो भारत के साथ सीरीज होनी है, हाँ। उसका अभी तक पाकिस्तान को इंतजार है।
मतलब क्रिकेट डिप्लोमेसी भी एक चीज, क्रिकेट डिप्लोमेसी भी होगी इसमें।
एग्जैक्टली होगी, तो उसी को शायद एक अच्छे पैगाम के तौर पर यहाँ पर लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है शहरयार खान,
हाँ।
वो यहाँ पे कह चुके हैं कल ही कि उन्हें ये पैगाम दिया गया भारत की तरफ से कि सुषमा जी यहाँ पर पहुँच कर जो है ना उस पर हतमी ऐलान कर सकती हैं, वही फैसला करेंगी कि दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज होनी है कि नहीं होनी। तो ये कहा जा सकता है, इम्कान है कि सुषमा जी जाते जाते एक अच्छा जो मैसेज है वो
देके जाए, देके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद से बीबीसी उर्दू संवाददाता जहीरुद्दीन बाबर, जानकारी दे रहे थे सुषमा स्वराज के वहाँ पहुँचने का।
देश दुनिया की खबरें 2400 घंटे bbchindi.com के साथ।
रुख चीन का करते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद पहली बार रेड अलर्ट जारी किया गया। वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए वहां पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। शहर के आधे वाहनों के सड़कों पर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई फैक्ट्रियों और इमारतों में जारी निर्माण कार्य पर भी रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध गुरुवार तक जारी रहेंगे। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए वात्सल्य राय से।
चीन की राजधानी बीजिंग पर स्मॉग यानी धुंध और धुएं की चादर छा गई है। धुंध की वजह से 100 मीटर से ज्यादा दूर देखना मुमकिन नहीं है और इसकी वजह है वायु प्रदूषण। हवा में मौजूद खतरनाक कणों की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सुरक्षित बताए गए मानकों से 10 गुना ज्यादा हो गई है। बीजिंग के मौजूदा हालात की जानकारी देते हुए पर्यावरण कानून के कंसल्टेंट टेरी टाउन्सहैंड ने बीबीसी से कहा,
यू कांट सी द टॉप्स ऑफ द स्काईस्क्रेपर्स, सो इफ यू आर ऑन द स्ट्रीट, अ लॉट ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स।
इसका मतलब यह है कि अगर आप बीजिंग में ऊंची इमारतों वाली गली में हैं, तो आप इसकी सबसे ऊपरी मंजिल को नहीं देख पाएंगे। आप शायद कुछ 100 मीटर तक देख सकते हैं। लोग खांस रहे हैं, आप इस प्रदूषण को अनुभव कर सकते हैं, इसका स्वाद ले सकते हैं और ये बहुत ही खराब है।
वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। स्थानीय समय के मुताबिक मंगलवार सुबह 7 बजे से राजधानी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन में करीब 2 साल पहले 4 स्तरीय अलर्ट सिस्टम लागू किया गया। इसमें रेड अलर्ट चेतावनी का सबसे ऊंचा स्तर है। अलर्ट लागू होने के बाद से स्कूल बंद है और इमारतों में जारी निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। कुछ फैक्ट्रियां बंद करा दी गई हैं। कारों के सड़कों पर चलने पर बंदिश लगाई गई है। कारों को ऑड और इवन नंबरों के आधार पर एक दिन छोड़कर एक दिन चलाने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की जरूरत को देखते हुए सार्वजनिक वाहनों की संख्या में इजाफा किया जाएगा। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था ग्रीन पीस के डोंग लियांग साई इन उपायों को काफी नहीं मानते। वो कहते हैं कि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन को दूरगामी कदम उठाने होंगे।
I think for the red alert measures, these are only temporary measures trying to.
मैं सोचता हूँ कि रेड अलर्ट के तहत किए जा रहे उपाय थोड़े वक्त के लिए उत्सर्जन को कम करने वाले अस्थायी उपाय हैं। लेकिन वायु प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए ग्रीन पीस चीन की सरकार से हमेशा कहता रहा है कि अगले 5 वर्षों की योजना के तहत वो देशव्यापी स्तर पर कोयले के इस्तेमाल की सीमा तय करे। इसके जरिए आप उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और समस्या का बड़े पैमाने पर समाधान हासिल कर सकते हैं।
प्रदूषण और प्रतिबंध से लोग परेशान हैं और उनमें से ज्यादातर इसे लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
मुझे इस तरह की धुंध पसंद है। इससे ऐसा लगता है जैसे कि आप ख्वाब में हो। आज यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। जब आसमान नीला होता है तब यहाँ काफी लोग नजर आते हैं। मैं आज यहाँ कुछ तस्वीरें लेने के इरादे से आया हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है।
मुझे लगता है कि ये ठीक है, स्कूल अपने छात्रों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, मुझ पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं होता।
मैं 20 साल से बीजिंग में हूँ और पहले ये शहर ऐसा नहीं था। पहले यहाँ सड़कों पर कुछ ही कार दिखाई देती थी, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इस प्रदूषण के कई कारण हैं।
बीजिंग में रेड अलर्ट गुरुवार तक जारी रहेगा। बीजिंग में 30 नवंबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जो चेतावनी का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जबकि चीन पेरिस में जारी जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को लेकर चर्चा में जुटा है। चीन की गिनती सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देशों में होती है। चीन में अब भी 60% से ज्यादा बिजली कोयले के इस्तेमाल से बनाई जाती है।
चीन की राजधानी बीजिंग वायु प्रदूषण से पीड़ित है, वहाँ हाई अलर्ट है। और भारत की राजधानी दिल्ली भी प्रदूषण से पीड़ित है। यहाँ पर प्रदूषण से निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में भी ये सम विषम नंबर की जो व्यवस्था है वो 1 तारीख से लागू होगी।
1 से 15 तारीख तक पहले चरण में ये इवन ऑड नंबर का जो अभियान है वो पहले चरण में चलेगा। 15 के बाद इसकी पूरे 15 दिन की समीक्षा होगी और उसके अनुरूप फिर आगे की रूपरेखा सरकार तय करेगी। सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ये इवन और ऑड नंबर की गाड़ियों का सिस्टम चलेगा। 8 बजे से पहले और 8 बजे के बाद लोग अपनी गाड़ियां जो प्राइवेट हैं उसको लेकर के आ जा सकते हैं। हमने अभी आज जो सहमति बनी है कि ये तारीख के हिसाब से इवन और ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी।
ये थे दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय। तो दिल्ली में भी इस तरह की व्यवस्था लागू होने वाली है जो कि जनवरी से शुरू होगी। करीब 1 हफ्ते तक बारिश के बाद चेन्नई का मौसम साफ होने लगा है। बारिश और बाढ़ में घिरे लोगों ने ऑपरेशन सफाई शुरू कर दिया है। कई फुट पानी में डूबे घरों, दफ्तरों और दुकानों को पुरानी रंगत देने की कोशिशें जारी हैं। एक रिपोर्ट के साथ चेन्नई से इमरान कुरैशी।
ठीक 1 हफ्ते बाद चेन्नई में मौसम साफ हो गया। चेन्नई के निवासियों ने अपने घर, दफ्तर या दुकानें साफ करना शुरू कर दिए, उसके साथ अपने नुकसान का भी एक तरह से जायजा ले लिया। पूर्व केंद्र सरकार के अफसर और वेस्ट मामलम के निवासी शोभना कहती हैं,
हमारा तो 3 कमरा है। दूसरी बात है, मेरी लड़की 9 मंथ्स प्रेग्नेंट है, एक बच्चा है 3 ईयर्स का। किसको हम बचाएंगे, क्या सामान बचाएंगे? फ्रिज, क्या क्या सामान, पलंग लंग सब कुछ, डॉक्यूमेंट सब कुछ चलेगा। नया घर बनाने ऐसा, अभी लड़की का प्रेग्नेंट 1 हफ्ता, अभी डॉक्टर को भी नहीं जा सकता, उस दिन अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, इसलिए 1 हफ्ता टाइम मिला है थोड़ा सांस लेने के लिए, थोड़ा घर को ठीक करने के लिए, सामान लेने के लिए।
शोभना के पड़ोसी बालचंद्रन भी अपने घर के गेट, छत पे ले जाने वाले सीढ़ियों पर और घर के बाहर अपने घर के सारे सामान और कपड़े सुखा रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे घर में तो कुछ नहीं बचा, मिक्सी से लेकर फ्रिज हो या टेलीविजन हो या लैपटॉप हो, हर चीज हमें नया खरीदना पड़ेगा। कम से कम 1.5 लाख रुपए का नुकसान तो है ही। ये थे बालचंद्रन के शब्द। बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों में आपको हर तरफ 2 चीजें देखने को मिलेंगी। हर रोड के कचरे के डिब्बे के पास हर तरह की घर के वास्तु जैसे कि भीगे गद्दियां, और हर गाड़ी के गैराज के सामने बहुत सारी स्कूटर और मोटरसाइकिल। त्यागराजा नगर के स्कूटर मैकेनिक कृष्णमूर्ति कहते हैं,
ஒரு நாளைக்கு 40-50 வண்டி வருது, எல்லாம் பேட்டரி தண்ணி ஃபுல்லா எரியுது, வண்டி ஃபுல்லா முழுகிச்சு இல்லையா, அதனால ஃபுல்லா வருது।
पिछले 2 दिन से हर रोज 40 से 50 गाड़ियां आती हैं। हर एक का सिर्फ स्टार्टिंग प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे गाड़ियां पानी में डूबी हुई थी, तो हमें बैटरी बदलाना पड़ता है और कार्बोरेटर, एयर फिल्टर और पेट्रोल टैंक साफ करना पड़ता है। काम के मुताबिक खर्च 300 से 3000 तक भी चल सकता है। ये थे कृष्णमूर्ति के शब्द। वेस्ट मामलम के निवासी कुमारस्वामी अपनी मोपेड रिपेयर करवाने एक दूसरे मैकेनिक के पास मिलते हैं। वो कहते हैं, ये गाड़ी तो 1 मीटर पानी में फंसी थी, मुझे बैटरी तो बदलाना ही पड़ेगा और उसके साथ स्पार्क प्लग और तेल भी। ये थे कुमार स्वामी के शब्द। तमिलनाडु सरकार ने तो मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन ये तो सिर्फ उन लोगों को जिनके घर बर्बाद हुए हैं या जिन घरों का नुकसान हुआ है। जाहिर है कि लोगों के दूसरे तरह के नुकसान के लिए सरकार मुआवजा नहीं देगी। चेन्नई से इमरान कुरैशी।
आईपीएल में पुणे और राजकोट की दो नई टीमें शामिल की गई हैं। ये दोनों टीमें अगले साल यानी आईपीएल 9 में 9 में हिस्सा लेंगी। ये टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की जगह लेंगी। रिपोर्ट आदेश कुमार गुप्त की सुनते हैं।
आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग में अगले दो सालों के लिए दो नई टीमों का चयन हो गया है। आज नई दिल्ली में हुई नीलामी प्रक्रिया के बाद बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दो नई फ्रेंचाइजी के नाम का ऐलान किया। ये दो टीमें हैं संजीव गोयनका की न्यू राइजिंग पुणे और इंटेक्स राजकोट। पुणे और राजकोट की टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की जगह लेंगी, जिन्हें आईपीएल 6 के दौरान कथित रूप से सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के आरोप के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति की सलाह के बाद निलंबित कर दिया गया था। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक गुरुनाथ मैप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा पर आईपीएल 6 में कथित रूप से सट्टेबाजी करने के आरोप थे और अंततः उन पर इसी साल आजीवन प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि अब इन दोनों यानी राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों का क्या होगा। चेन्नई की टीम में तो वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल थे। वहीं राजस्थान की टीम में अजिंक्य रहाणे और स्टुअर्ट बिन्नी शामिल थे। दो नई टीमों के आने से अब चेन्नई और राजस्थान के खिलाड़ियों के आईपीएल में खेलने का रास्ता साफ हो गया है। अब दोनों नई टीमें 15 दिसंबर से खिलाड़ियों के चयन के लिए ड्राफ्ट सिस्टम में हिस्सा लेंगी। दोनों टीमें कम से कम 40 और अधिकतम 66 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को खरीदने में खर्च कर सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान के खिलाड़ियों को दो ग्रुप में बांटा जाएगा, यानी कैप और अनकैप। कुल मिलाकर 50 के करीब खिलाड़ियों का बंटवारा होगा। वैसे खिलाड़ी को चुनने का पहला अधिकार न्यू राइजिंग को मिलेगा और उसके बाद बारी बारी से 10 खिलाड़ियों को चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसकी जानकारी अगले 7 दिनों में बीसीसीआई को दे दी जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा,
क्योंकि जो न्यू राइजिंग है, इन्होंने पुणे के लिए -16 करोड़ ऑफर किया है। इसकी पहला चांस इनका बनता है तो फर्स्ट प्लेयर ये पिक करेंगे और 5 प्लेयर्स कुल दिए जाएंगे, जिसमें 4 इंडियन कैप प्लेयर्स होंगे और मैक्सिमम आप 5 प्लेयर दे सकते हैं। तो दूसरा एक लेगा, फिर
जाहिर है कि अब महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, अजिंक्य रहाणे, मोहित शर्मा और अश्विन और स्टुअर्ट बिन्नी जैसे खिलाड़ियों को टीम में लेने की जंग शुरू होगी। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले समय में आईपीएल अपनी साफ सुथरी तस्वीर पेश कर सकेगा।
आदेश कुमार गुप्त की ये रिपोर्ट आप सुन रहे थे। आईपीएल में पुणे और राजकोट की दो नई टीमें शामिल हो गई हैं। आदेश कुमार गुप्त मौजूद हैं। आदेश, और क्या चल रहा है?
जी देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच इसी माह होने वाली क्रिकेट सीरीज़ होगी या नहीं, इस पर अभी संदेह के बादल छाए हुए हैं। आज आईपीएल की दो नई टीमों के ऐलान के समय बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर ने गेंद पाकिस्तान के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ही मैदान की तैयारी करनी है और जो टेलीविज़न राइट्स हैं वो किसके पास जाएंगे ये भी फैसला उन्हें करना है।
और जैसा कि हम प्रोग्राम के शुरू में सुन रहे थे कि क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर जो सुषमा स्वराज वहाँ पर पहुँची हैं, तो इस पर भी आगे बात हो सकती है।
जी हाँ, लेकिन इस पर उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो अभी इस बारे में भविष्यवाणी कर सकूं। तो कुल मिलाकर संदेह के बादल और गहराते जा रहे हैं, एक दो दिन में तस्वीर साफ होगी। उधर भारत के आर अश्विन अपने क्रिकेट करियर में नई ऊंचाइयों को छूते हुए आज आईसीसी की ताज़ा रैंकिंग में टेस्ट ऑलराउंडरों की सूची में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि गेंदबाजी में वो दूसरे स्थान पर बने और अजिंक्य रहाणे बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग में 12वें पायदान पर पहुंच गए।
बहुत बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त। और इससे पहले के कार्यक्रम में आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बुधवार को अफगानिस्तान पर हो रही बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था UNHCR ने चेतावनी दी है कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान में दिए जा रहे भाषणों से अमरीका में सीरियाई शरणार्थियों को बसाने के कार्यक्रम को नुकसान हो रहा है। सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे विद्रोही गुट भविष्य में संभावित शांति वार्ता के लिए संयुक्त मोर्चा गठित करने के उद्देश्य से सऊदी अरब में वार्ता कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनियों में से एक एंग्लो अमेरिकन ने कीमतों में गिरावट से निपटने के लिए एक बड़ा पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है। और दक्षिण अफ्रीका के एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करने का दोषी करार दिए जाने के खिलाफ संवैधानिक अदालत में चुनौती देंगे। BBC समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर के इस अंक में बस इतना ही। स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। घटना चक्र कार्यक्रम में आपसे फिर से मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।